अब उसके बाद आपने दूसरी जिम्मेदारी जो उस वक्त लोगों को दी, असल में वो बात आपकी जहन में डालना चाहती हैं, और वो क्या है कि उसके बाद फिर लोगों को आपने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप लोगों का ये जिम्मा है कि आप इस मैसेज को लेके लोगों तक पहुंचे। यानी जिसने मुझसे जो बात सुनी है वो अब जाके दूसरों को बताए, क्योंकि मेरा काम अब पूरा हुआ और अब आपका काम शुरू हो गया। ये था वो पहला दिन जिस वक्त आप कह सकते हैं कि इस उम्मत को उम्मते वसत बनने और लोगों तक पैगाम देने के लिए आपने प्रैक्टिकली तैयार कर दिया। क्यों? कि इसके सिर्फ 2 या 3 महीने के बाद अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह ताला खुद आपसे ये काम करवा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ही लोग शुरू हो जाएं इस पैगाम को आम करने के लिए। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लम का सिर्फ एक बार ये कहना कि आप सब यहाँ से उठें और आगे चले जाएं और इस पैगाम को आम करें। उसके बाद नबी सल्लम वापस आए। ज़िलहज का महीना होता है जब हज होता है, उसके बाद ज़ीकात, मुहर्रम और सफ़र, सिर्फ 3 माह, बीच में 2 माह रहे। और सफ़र के महीने में कुछ आखिरी दिनों में अल्लाह के नबी सल्लम की बीमारी जो थी वो शदीद हुई, और इस तरह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल होता है। अब आप ज़रा सब मेरे साथ चलें इस पैगाम की नौईयत को समझने के लिए कि सहाबाए कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे, शदीद मोहब्बत करते थे। उनकी अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत की मिसाल आज के दौर में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लम से की वो कौन सी मोहब्बत थी जिसमें आप लोगों ने अपनी जान भी लगा दी, अपने माल निछावर कर दिए, अपनी जिंदगियां दे दी, अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया वो कि जो वाकई होना चाहिए। हम अपनी मोहब्बतों का जायज़ा लें कि अल्लाह के नबी सल्लम के साथ हमें वही मोहब्बत है जो होनी चाहिए। इब्तिदा में मैंने आपके सामने एक आयत रखी थी, मैं चाहूँगी कि उसका तर्जमा आपके सामने रखूँ। उम्मीद तो मुझे ये है कि आप सबको बग़ैर तर्जमे के समझ आ चुकी होगी, क्योंकि माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते भी हैं और कई बार ख़त्म भी किया होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको उर्दू में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, और आयत बड़ी प्यारी है, अगर आप चाहें तो बाद में जाके कुरान पाक से देख भी सकते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, ये 24 नंबर की आयत है सूरह तौबा की। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, जब मैं ये आयत पढ़ूंगी ना तो आप साथ साथ अपने आप को सोचेंगे कि क्या ये मुझे ही कहा जा रहा है ना, क्योंकि अल्लाह ताला हम सब के लिए ये आयतें नाजिल कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लम पे, कि आप इनसे कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी बिरादरी और तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया है और तुम्हारी तिजारत जिसके मंदा पड़ जाने पर, यानी जिसके बिज़नेस डाउन होने पर, फ्लॉप होने पे, बैंकरप्सी होने पे तुम डरते हो, और तुम्हारे रहने के मकानात जो तुम्हें पसंद हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ने गिन गिन के वो चीज़ें बता दी जो हमारे पाँव पकड़ लेती हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के इजहार में रुकावट बन जाती है। कैसे पता चलता है कि हम अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करते हैं या अल्लाह ताला के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं? बड़ा सिंपल सा क्राइटेरियन दे देती हूँ। एक तरफ है अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात, और दूसरी तरफ है कोई बात जिसमें हमारे माँ बाप का मामला है। माँ बाप हमें कोई ऐसा काम करने को मजबूर कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से टकरा रहा है, क्लैश हो रहा है दोनों में, किसकी मानते हैं? अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो इंशाल्लाह वो मान जाएंगे, उनकी मानेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझा देंगे। फिर दूसरे मरहले पे बच्चे, एक तरफ बच्चों की कोई डिमांड है, बच्चों की कोई खुशी है, बच्चों का कोई मुतालबा है, और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म है। जहाँ कंट्रोवर्सी आ गई, जहाँ कंट्राडिक्ट हो गया, वहाँ पे हमारा इम्तिहान शुरू। और हम सोचें कि दिन में कितनी बार हम इस इम्तिहान से गुजरते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे भाई बहन, इख्वानुकुम, फैमिली के लोग कितने प्यारे होते हैं ना। बाज़ दफ़ा हम नहीं करना चाहते कोई गलत काम, लेकिन ये कह के करते हैं, क्या करें, फिर भाइयों की खुशी है, फिर बहनों की खुशी है, फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। फिर वाज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ और बीवियों के लिए शौहर, कितनी दफ़ा हम बीवियों का नाम लेके या कितनी दफ़ा हम शोहरों का नाम लेके गलत काम करते हैं। और माजरत के साथ, मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है देखने में, लोगों को ऑब्जर्व किया जो मैंने, कि बहुत सारी औरतें तो हमेशा यही क्लेम करती हैं कि हमारे मियाँ नहीं करने देते ये काम। मुझे ऐसे लगता है कि अपने मियाँओं को सामने रख के हम पेश करेंगे कि क्यामत के ये हैं जिनकी वजह से हम नेकी नहीं करते थे। वो बेचारे कुछ नहीं कहते। कोई मर्द है जो अपने अपनी बीवी को जन्नत में जाने से रोके? ये कर लो और वो ना करो, हर बात में मियाँ नहीं पसंद करते। जो करना होता है वो कर लेते हैं हम, और जो नहीं करना होता वो मियाँ बेचारे का नाम लग जाता है। ये भी क्यामत के दिन हिसाब होगा। याद रखिए, किसी पे हमने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया या किसी पे ब्लेम कर दिया तो फिर क्या होगा? बाज़ दफ़ा बच्चों का नाम ले लेते हैं, कहा जाए अच्छा चले नमाज़ पढ़ी थी, नहीं वो बच्चों के काम बड़े होते हैं, कुरान पढ़ने आ जाए, नहीं बच्चों की मसरूफियत बड़ी है, बच्चों को लेना है जाना है। यानी हम हमेशा दूसरे के ऊपर बात डाल के अपने आप को फारिग करना चाहते हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे ख़ानदान, सोचिए ज़रा, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हमारा ख़ानदान हमें किसी चीज़ पे मजबूर करता है और वो बात अल्लाह ताला के हुक्म से या उसके नबी के हुक्मों से कंट्राडिक्ट करती है। मुझे तो लगता है कि हम अपने दिल से किसी चीज़ को बहुत भी नापसंद करते हो ना, लेकिन हम फैमिली के आगे आके अपने घुटने टेक देते हैं। सच है कि झूठ? मैं गलत तो नहीं कह रही? क्यों हम ये सोच लेते हैं नहीं इनको नहीं नाराज़ कर सकते? अब क्या है, जो भी है ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी रसूमात हो सकती हैं, कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं, कोई ऐसी ज़िंदगी गुजारने का तरीका हो सकता है कि जिसमें फैमिली कुछ और कहे लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है। फिर आप देखिए, व अमवालु नक्तरफ्तुमूहा, तुम्हारे वो माल जो तुम कमाते हो, तुम्हारे मनी मैटर्स, यहाँ कहाँ कैसे अल्लाह ताला का हुक्म और वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है? कैसे अल्लाह ताला के हुक्म और रसूल के हुक्म के साथ माल का मामला आता है? यानी अल्लाह और उसके रसूल ने बताया इस तरीके से मत कमाओ, हम कहते हैं हम तो कमाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ये हराम है, हम कहते हैं हम तो करेंगे, इसमें शक है हम तो नहीं छोड़ेंगे। यानी क़यामत के दिन जो इंसान से 5 सवाल होने हैं, उसमें से तीसरे दर्जे का ये सवाल है कि बताओ माल कहाँ से कमाया। आप पूछेंगे कुछ और भी सवाल है तो पांचों ही सवाल बता देती हूँ, ताकि कम से कम वो पेपर तो पता चल जाए जो क़यामत के दिन सामने आना है। सुनना चाहते हैं? मालूम तो होंगे, लेकिन चलें रिपीट कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ही की बात, जिनकी मोहब्बत में आज हम यहाँ जमा हुए हैं, उनकी सिर्फ एक हदीस अगर आपके सामने रख दूँ और उसी के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देख लें, तो मेरा ख्याल है कि ये पता चल जाएगा कि कल क़यामत के दिन वो हमसे खुश होंगे या नाराज़ होंगे। आपने फरमाया कि ला तज़ूल क़दमन इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन्हु खमसा। आदम का बेटा यानी कोई भी इंसान क़यामत के दिन अल्लाह सुबहाना ताला के सामने से कदम भी नहीं हटा सकेगा। सोचिए ज़रा तसव्वुर में, कदम नहीं। जैसे आप बच्चे को गुस्से में कहते हैं ना, खड़े हो जाओ, हिलना नहीं इस जगह से, डोंट मूव, ओके? यानी इतना गुस्सा होगा अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला उस दिन इतने मतलब कहर में होंगे कि किसी को हिलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दें। 5 सवाल हर एक ने जवाब देना है, औरत ने भी देना है, मर्द ने भी देना है, मुस्लिम ने भी देना है, गैर मुस्लिम ने भी देना है। कौन से? पहला सवाल, अन उम्री ही फी माफना हो, ये बताओ कि उम्र कहाँ गुजार के आए हो, वेयर डिड यू स्पेंड योर लाइफ, क्या मसरूफियात थी, क्या तरजीहात थी, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या थी, सुबह से शाम तक भागते कहाँ थे, करते क्या थे, तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद कितना को समझा? क्या जवाब देंगे? खाते पीते गुजर गया, कपड़े पहनते गुजर गया, घर से जाते गुजर गया, मिट्टी के बुत पूजते हुए गुजर गया। ये क्रिस्टल क्या है? ये बुत बना हुआ है ना, सारा दिन उसको ही पूजते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, सजाते रहते हैं। अल्लाह ताला ने आगे कह दिया ना कि वह मसाकिनु तरदऊ नहा, तुम्हारे वो घर जो तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं, क्या तुम्हें ये अल्लाह के हुक्मों से तो नहीं रोक रहे? क्या इसी घर को चमकाते चमकाते कहीं तुम अपनी नमाजें तो नहीं छोड़ रहे? तुम्हें अल्लाह की किताब पढ़ने का वक्त क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम इस घर के सजाने में लग गए। यानी उम्र का सवाल हर एक को जवाब देना पड़ेगा, कहाँ गुजारी थी, क्या करते थे, तुम्हारे मामले क्या थे। चले जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ उसका जवाब तो दे देगा इंसान। तो अगला जो सवाल क्या होगा, अन शबाबी ही फी मा बलाहू, जवानी कहाँ गुजारी, वेयर डिड यू स्पेंड योर यूथ टाइम, तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरी। अब बड़ा ऑब्वियस है कि पहले सवाल के अंदर इसका जवाब आ रहा है, उम्र का एक हिस्सा होती है ना जवानी, लेकिन ज़रा सोचिए कि जवानी का अलग सवाल क्यों है, बचपन का अलग सवाल नहीं है, बुढ़ापे का अलग नहीं है, क्यों है जवानी का अलग? क्यों? कि जवानी गुजरी हमारी अपनी पसंद से। आज जवानी का नाम दीवानी, मस्तानी, कर लो जो करना है। आज ज़रा सोचिए हमारे यहाँ जवानी का क्या नाम है? अमूमन हम जवानी को कहाँ गुजारना चाहते हैं? हमारे जवान कहाँ पाए जाते हैं? यानी माजरत के साथ कहूँगी कि मस्जिद हो, नमाज का वक्त हो, दीन की महफिल हो तो बुज़ुर्ग ख़वातीन, और शैतान के महफिलें हों तो वहाँ वो ख़ुद भी कहेंगे बेटा तुम चले जाओ, हमारा क्या काम। यानी गलत जगहों पे जवान। हम क्यों सोचते हैं कि हमारी जवानियाँ दुनिया के लिए हैं? अपने लिए हम क्या चाहते हैं? बीवी चाहती है उसका शौहर जवान हो, माँ चाहती है बेटा जवान हो ताकि मेरे काम करे, बेटी जवान हो मेरी हेल्प करे। मैं तो सोचती हूँ आजकल बच्चे भी कहते हैं कि हमारे माँ बाप जवान हो, उनको शर्म आती है बूढ़े माँ बाप को मिलवाते हुए अपने दोस्तों से। अल्लाह को क्या देते हैं? जब घुटनों में दर्द होने लगता है चल नहीं सकते, जब बैठते ही कमर दुखने लगती है तब जाते हैं अल्लाह के पास, जब हाथ लिख नहीं सकते तो तब जाते हैं। सारी जिंदगी लोगों को दे दी, तुम मुझे इस्तेमाल करो, रब के पास कब जाते हैं? पहला सवाल चले पूरी उम्र का था उसका तो गुजरा, जवानियों का क्या हिसाब होगा? अमूमन क्या होता है, बचपन नादानियों में गुजर जाता है, हम अक्तों में गुजर जाता है, और जवानी जो है वो मस्ती में गुजर जाती है, तो बुढ़ापा देख के फिर इंसान रोता है, हसरतों में गुजरता है। कहते हैं ना बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तब आते हैं जब आने की हिम्मत नहीं रहती, फिर हसरतें, फिर वो गई जवानी वापस नहीं आती। जितनी मर्जी खुराक खा लें, जितनी मर्जी अपने फिजीक को पूरा बदल सकते हैं, बाहर जवान लगेंगे लेकिन अंदर कमजोरियां आ गई। हर आने वाला दिन अंदर कमजोरी को बढ़ा रहा है, उठते बैठते में अब घुटनों पे हाथ आने लगे, हर चंद दिन के बाद बालों में काल सफ़ेद बाल नज़र आने लगा, चेहरे पे झुर्रियों का इजाफा, ये क्या बताती है कि तुम अब अगले सफ़र पे चल रहे हो। और क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला पूछ रहे बताओ करते क्या थे? अपनी जवानी गुजर गई तो अपने बच्चों की जवानी देख लेते हैं। आज हमारे यंग्स क्या कर रहे हैं? हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बहनें, जवानी में अमूमन क्या तसव्वुर है हमारे पास जीने का? जो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लम दुनिया से जाते जाते हमें दे के गए, क्या आज हमने अपने जवान बच्चों को उसके काबिल किया कि उस काम को कर सकें? आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर यह कहा था कि सब जाओ और इस पैगाम को आम करो, और उसके 3 माह के बाद अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल हो जाता है, और उसके बाद कोई सहाबी जिसके पास कोई हुनर था कोई इल्म था मदीना में नहीं रहा, निकला, कोई यमन में गया, कोई ईरान, इराक, पूरी दुनिया में फैल गए सिर्फ आपका एक पैगाम सुन के कि अब इस बात को उन तक पहुंचा दो जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। उस वक़्त भी मस्जिद नबी मौजूद थी, उस वक़्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मौजूद था, उस वक्त भी बैतुल्ला मौजूद था। हम जैसे होते तो वहां बैठ जाते, आपकी जालियों को चूमते रहते और रोते रहते, आपके रोजे पे जाके सलाम पढ़ते जाते, और उनको जिसको कहते हैं कि वहशत तारी होती रहती, और वहां जाके नाते पढ़ते रहते। पढ़ सकते थे, उनको भी आता था, हमसे ज्यादा मोहब्बत वाले थे। मैंने सिर्फ एक सहाबी की मोहब्बत का एक कोना सुनाया, टाइम नहीं है, वरना मैं आपको 10 सहाबियों के वाकयात मेरे सामने रखे हुए हैं कि मैं आपको सुनाऊं, और फिर हम अपनी मोहब्बतों को उनकी मोहब्बतों से परखें। नहीं, उनकी नज़र थी आपके पैगाम पे, हमारी नज़र है आपकी ज़ात पे। एक जुमला बोलूँगी, गौर से सुनिएगा, कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ साथ आपकी बात से मोहब्बत करनी है। आज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ी मोहब्बत है, उनकी बात से मोहब्बत नहीं है। हम उनकी जुल्फ़ों की बात करते हैं, हम उनके चेहरे की बात करते हैं, हम उनके रुखसारों की बात करते हैं, हम उनके नाम ले ले के दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। जहाँ उस नबी की बात आती है तो हम कहते हैं ये आज के दौर में नहीं हो सकता। अच्छा, ये फ़र्ज़ है या सुन्नत? अच्छा, सुन्नत है इसका, तो ये तो फिर छोड़ ही दो। फ़र्ज़ों का मतलब क्या है कि ये तो मारे बांधे करने ही पड़ेंगे, सुन्नत है इस सो के लेट इट गो, कोई बात नहीं, ये तो फिर बात, और छोड़ें इसकी क्या बात है। ये नहीं होते मोहब्बत वाले। ऐसे लोग कल मैदान महशर के अंदर खड़े होकर नहीं कह सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बस आपकी शान में बैठ के कसीदे पढ़ते रहते थे, जब अमल का मौका आता था तो हम पीछे हट जाते थे, हम नहीं कर सके वो काम। आज हमने अपनी नस्लों को नहीं तैयार किया उस पैगाम को आम करने के लिए, कल क्या क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी होंगे? नहीं होंगे। वो भी वहाँ बैठते मस्जिद नबी में, एक एक नमाज की बजाय हज़ार हज़ार नमाजें होती, एक पढ़ते तो 1,000 का सवाब होता, थोड़े दिन के बाद मक्का चले जाते और एक नमाज के बदले में 1 लाख नमाजों का अजर मिल जाता। हो सकता था ना, ये सारी शरीयत उस वक़्त भी मौजूद थी, लेकिन उनका काम क्या था कि नबी का मिशन क्या था, नबी किस रास्ते पे आए, आपने जो पत्थर खाए वो क्यों खाए, आपका दान टूटा तो क्यों टूटा, आपके सर में आपकी हौद की कड़ियां लग गई तो क्यों लगी, क्या आप लोगों को एक ही कहते रहे कि लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगो अल्लाह को एक मानो फला पा जाओगे। हम कहते हैं इट्स ओके, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, माइंड योर बिजनेस, कोई बात नहीं, रिलीजन पे बात ना करो, सबको अच्छा कहो ताकि तुम्हें लोग बुरा ना कहें। अल्लाह के नबी सल्लम जैसे ही पैदा हुए वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैदाइश की खबर मिलती है अबू लहब आपका चचा इतना खुश है कि वो औरत सुवैबा नाम की लौंडी जिसने आके खबर दी और जिसने बाद में अल्लाह के नबी सल्लम को दूध भी पिलाया, कहा जा तू आज़ाद है, इतनी मोहब्बत की आपके साथ, नसब की मोहब्बत कह लें, आपकी ज़ात की मोहब्बत कह लें, लेकिन जिस दिन वो नबी नबी बना, कोहे सफ़ा पे खड़े होके कहा कि लोगो अल्लाह को एक मानो फला पा जाओगे, जब आप पे पहली वही का नज़ुल हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, फिर उसके बाद आप थोड़े दिन तो इस पैगाम को लिए, फिर दूसरी आप पे एक वही आई कुम फानजिर, खड़े हो जाओ आप डराओ लोगों को, सोने के दिन गए या अयुहल मुद्दसिर, खड़े हो जाओ पैगाम दो अपने लोगों को, बलवानजिर शीरत कल अकरबीन, आयतें आती जा रही हैं आती जा रही हैं, क्या बुढ़िया भी इस मैसेज को कन्वे कीजिए? तो आपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, ख़ानदान के लोगों को दावत की, ये भी एक असूल है अल्लाह के दीन की दावत के लिए, लोगों को अगर खाने पे भी बुलाना पड़े तो कोई इसमें बुखल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लम की। और जब आपने वहाँ खड़े होके कहा कि लोगों अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है तो मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे, हालांकि मुमकिन नहीं था लेकिन मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया, आप सादिक और अमीन थे, ये दाव आपको एक टाइटल मिला कि आपने कभी झूठ नहीं बोला और आप अमानतदार हैं। कहा अच्छा मेरे पर इतना यकीन है, तो लोग अगर मैं ये कहूँ कि एक अकेला है ऊपर वाला, ये ज़मीन वाले कुछ नहीं है, इन सब को छोड़ के एक को मानो, तो वही अबू लहब जिसने आपकी पैदाइश की खबर पे लौंडी को आज़ाद किया, जश्न मनाए खुशियाँ मनाई, वो कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ टूट जाएं, नऊज़ुबिल्लाह, बद्दुआ दे दी। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक शख्स का नाम लेकर रुस्वा किया है और वो नाम है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़नाहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल खतब। क्यों? कि तुमने मेरे नबी को कहा तुम्हारे हाथ टूट जाए, ए अबू लहब तेरे हाथ टूटेंगे, और टूटे। हाथ जो होते हैं ना, ये एक ताकत की अलामत होती है, मुहावरा भी है, बेटों को लोग कहते हैं बेटे आपकी ताकत होते हैं, आपकी कुव्वत होते हैं। और आपको पता है कि अबू लहब का कितना बुरा अंजाम हुआ, कि जब फौत हुआ इसको एक ऐसी बीमारी हुई थी कि जिसको उसके उस वक्त में लोग अछूत की बीमारी कहते थे, इसकी लाश कई दिन तक मक्के की गलियों में पड़ी रही, इसके सगे बेटे नहीं आते थे कि इसको पकड़ के दफना सके कि कहीं हमें ना जर्म्स लग जाएं। फिर जब लोगों ने बातें करनी शुरू की कि देखो कैसी औलाद है, बाप को भी नहीं दफनाते, तो छड़ियां दीवार यानी दरख्तों से स्टिक्स उतार के तो उसके साथ धकेल धकेल के इसको घड़े में डाल दिया। अल्लाह जिसके लिए कह दे उसके लिए क्या नहीं होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। अबू लहब ने आपकी ज़ात से मोहब्बत की लेकिन इंजाम बुरा क्यों हुआ, बात से मोहब्बत नहीं की। हमारे लिए क्या पैगाम है अगर हमने अल्लाह के नबी सल्लम की बात से मोहब्बत नहीं की? हम आपकी मोहब्बत के गुण गाते हैं, रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम आपकी मोहब्बत में जो कर सकें वो करते हैं, ठीक है मोहब्बत है कोई बात नहीं, तो क्या मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की है?